हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 338। वहां खड़े अनय और मनस्वी दोनों ही आदित्य की बात का मतलब समझ रहे हैं कि उसका इशारा मनस्वी की तरफ है, लेकिन अनय ने कुछ कदम आगे आते हुए सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभी एक मिनट, तू मेरी बात तो सुन पहले। अनय अपनी जगह से थोड़ा सा भी और आगे आ पाता उससे पहले ही आदित्य अपनी जगह से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 338। वहां खड़े अनय और मनस्वी दोनों ही आदित्य की बात का मतलब समझ रहे हैं कि उसका इशारा मनस्वी की तरफ है, लेकिन अनय ने कुछ कदम आगे आते हुए सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अभी एक मिनट, तू मेरी बात तो सुन पहले। अनय अपनी जगह से थोड़ा सा भी और आगे आ पाता उससे पहले ही आदित्य अपनी जगह से पीछे हो गया और उसने अपनी हथेली दिखाकर अनय को उसकी जगह पर ही रुकने का इशारा करते हुए गुस्से में पूछा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है अनय, लेकिन पहले तुम ये बताओ, ये यहाँ पर क्या कर रही है और फिर से क्यों आई है ये यहाँ तुम्हारे साथ? आदित्य को इतने गुस्से में देखकर अनय ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आदि प्लीज़, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, एक मिनट इसकी बात तो सुन लो। इस पर आदित्य ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी कोई भी बात सुननी चाहिए। इतना बोलते हुए वो वहाँ साइड से निकल कर जाने लगा। आदित्य प्लीज़, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मनस्वी ने आगे आते हुए बोला तो आदित्य उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर रुक तो गया, लेकिन उसने मनस्वी से कुछ भी नहीं कहा। मनस्वी के बजाय आदित्य ने अनय की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा भी क्या बताना चाहती है ये मुझे, जबकि ये हमेशा ही मेरा बुरा चाहती है? आदित्य जी इस बात का जवाब देते हुए अनय ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मनस्वी अब पहले से बहुत चेंज हो गई है और उस दिन भी मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, पर उस दिन, आदित्य ने फिर से बीच में उसकी बात काटते हुए बोला, तो अभी भी क्या बदल गया है? उस दिन से मेरी सुनैना अभी भी यहाँ हॉस्पिटल में ही है और कहीं ना कहीं उसकी हालत की जिम्मेदार ये भी है, क्योंकि इसने भी उस विराज का साथ दिया है, इसके सपोर्ट के बिना वो अकेले इतना कुछ नहीं कर पाता। ये सारी बातें बोलते हुए आदित्य मनस्वी की तरफ देख रहा है और गुस्से में उसका पारा चढ़ गया है और उसे फिर से गुस्सा होते देखकर मनस्वी ने कहा, देखो ये सारी बातें करने के लिए ये जगह सही नहीं है आदित्य, मुझे पता है तुम सुनैना की हालत को लेकर परेशान हो और मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो, लेकिन तुम्हारी ये नाराज़गी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुम सुनैना की फ़िक्र करते हो, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे पता है विराज तुम्हारे पास है और तुम जानते हो वो कहाँ है, इसलिए बस मैं तुम्हें इस बात के लिए ही वार्निंग देना चाहती थी कि थोड़ा सा संभल कर रहो, उसके पेरेंट्स वो सैगल्स उसे ढूंढ रहे हैं, वो भी काफ़ी पावरफुल है, हाँ तुम्हारे जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इकलौते बेटे को ढूंढने के लिए पूरी जान तो लगा ही सकते हैं, और फिर अगर उन्हें पता चल गया तो मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से इन सब में फंसो और तुम्हें सुनैना से दूर होना पड़े। मनस्वी की ये सारी इतनी समझदारी भरी बातों ने आदित्य को लगभग कन्विंस कर ही लिया है, आदित्य भी उसकी बातों से कन्विंस नजर आ रहा है, लेकिन पूरी तरह वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ी शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा और मेरी ये मदद करने की वजह, क्योंकि मुझे नहीं लगता बिना मतलब के तुम्हारे जैसी घमंडी, मतलबी और मौका परस लड़की कुछ भी करेगी। आदित्य ने मनस्वी को लेकर इतने सारे हार्श वर्ड बोले तो इस बार अनय ने बीच में आते हुए बोला, आदित्य प्लीज़, उसे बेवजह ये सारी बातें सुनाने का कोई मतलब नहीं है, और उसने कहा ना कि वो सिर्फ तुम्हारे हेल्प करना चाहती है, उसने बोला ना उसे पता चल गया है विराज के बारे में कि वो तुम्हारे अंडर में है और वो खुद भी विराज को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला तो उसने हाथ पैर मारने बंद कर दिए और वो भी चाहती है कि विराज को उसके किए की सज़ा मिले, और उससे तुम इस तरह बात मत करो, वो मेरी वाइफ है। अनय की ये बात सुनकर आदित्य ने एकदम शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन वो और कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं सच है, और उसने सोचा कि अगर उसके सामने कोई सुनैना से ऐसे बात करे तो उसे भी बुरा लगेगा, और भले ही आदित्य आज दूसरी बार ही मनस्वी से पर्सनली मिल रहा है, लेकिन फिर भी जैसा अब तक उसे उसके बारे में देखने और सुनने को मिलता था तब से आज वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। उसे ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद मनस्वी ने अनय की तरफ देखते हुए कहा, तुम अपनी बात लो आदित्य से, मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना चाहिए। इतना बोलते हुए मनस्वी ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य पारा देखने लगा। मनस्वी के वहाँ से जाने की बात सुनकर अनय ने कहा, ठीक है यहाँ पर मत रुको, लेकिन तुम कार में मेरा वेट करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। मनस्वी ने उसकी इस बात पर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से चले जाने के बाद अनय ने आदित्य को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आदित्य देखो मुझे पता है उसने बहुत सारी गलतियां की हैं और शायद ये सब उसने बस आगे बढ़ने के जुनून और होटल इंडस्ट्री में नंबर वन बनने की कोशिश में किया है, और इसके अलावा रही विराज के साथ मिले होने की बात, तो वो उसका कज़न है और अगर कोई भी उससे छोटी मोटी हेल्प मांगेगा तो तो वो कर ही देगी, लेकिन जब से उसे विराज के खतरनाक इरादे पता चले थे वो हमेशा से ही उसके खिलाफ रही है। मैंने खुद वो सब कुछ देखा है, मेरा विश्वास करो। उसकी इस बात पर आदित्य ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है अनय, लेकिन मनस्वी मुझे नहीं लगता उसके ऊपर मैं इतनी जल्दी पूरी तरह से विश्वास कर पाऊंगा। आदित्य ने सीधे ही मना करते हुए कहा तो उसकी इस बात पर अनय का मुंह लटक गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ के बीच पहले की ही तरह दुश्मनी रहे। वो उन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। अनय ने उसे कुछ समझाने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू किया, लेकिन फिर आदित्य की तरफ देखते हुए वो कुछ सोचकर चुप हो गया। लेकिन आदित्य वो पहले से बहुत चेंज। अनय को इस तरह से मायूस देखकर आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अनय इस तरह से मुंह मत बनाओ और इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दो राइवल्स के बीच अगर सुलह हो भी जाए तो इतनी जल्दी वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। बस ऐसा ही कुछ मेरे और मनस्वी राठौर के बीच भी है। मैं तुम्हारी साइड से भी समझने की कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारी और उसकी इक्वेशन अलग है, क्योंकि तुम दोनों का रिलेशन अलग है और तुम ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करते हो सकता है तुम्हें उसकी कोई ऐसी साइड नज़र आई हो जो अभी मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी तरफ से भी समझो, आई जस्ट नीड सम टाइम। आदित्य ने जब उसे पूरी बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाई तो अनय भी उसकी बात समझते हुए बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, सारी चीज़ों में वक्त लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारी अभी सिचुएशन ऐसी है, तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ हुआ, भाभी अभी भी हॉस्पिटल बेड पर है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा किसी पर भी भरोसा करना। कोई बात नहीं, टेक यू टाइम, बस इतना याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आदि। अनय ने काफ़ी समझदारी दिखाते हुए ये बात कही तो आदित्य भी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता था मेरा बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा समझदार है, एंड बाय द वे वो सुनैना को होश आ गया है और मैं अभी उससे मिलकर आया, उसने मुझसे बात भी की और तुम्हें पता है मैं यही बताने के लिए यहाँ पर आ रहा था, लेकिन फिर वो मनस्वी थी यहाँ पर और फिर बात का सारा टॉपिक ही चेंज हो गया। अनय ने थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा, होश तो शायद भाभी को सुबह ही आ गया था ना, उसके बाद ही तो तू यहाँ से कहीं गया था।
आदित्य ने उसे बात क्लियर करते हुए बोला, हाँ सुबह होश तो आ गया था यार, लेकिन सुबह उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन अभी पहले से काफ़ी बेहतर थी और वो बात भी कर पा रही थी। अनय ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, वो जल्दी ही पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी और फिर तुम्हारे साथ घर भी वापस जा पाएंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य भी हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अरे हाँ वो थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी तरफ से देखता हूँ। आदित्य ने सिर्फ इतना ही बोला, लेकिन अनय फिर भी समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है और मुस्कुराते हुए बोला, ओके बट थोड़ा सा केयरफुल रहना, बाकी मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई भी डाउट नहीं है। इतना बोलकर कुछ देर और इधर उधर की बातें करने के बाद अनय आदित्य को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसे याद आया कि मनस्वी पार्किंग एरिया में उसका वेट कर रही होगी। अनय वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ पड़ गया और उसके वहाँ से जाते ही आदित्य तुरंत अपने हेड बॉडीगार्ड अरविंद के पास आया और उससे इस बारे में बात करने लगा जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी उसे मनस्वी और अनय से पता चली थी। आदित्य की पूरी बात सुनने के बाद अरविंद बोला, ओके बॉस डोंट वरी, मैं वो सब कुछ देख लूँगा, मिस्टर साइकिल जिसे भी हायर करेंगे या अगर कोई पुलिस ऑफिसर भी ये केस देख रहा होगा तो मैं उन सबको ही हैंडल कर लूँगा। अरविंद ने इतना कहा तो आदित्य ने तसल्ली से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे अरविंद की बात पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो इतने दिनों से उसके लिए काम करता है और आज तक वो शायद ही किसी काम में अनसक्सेसफुल हुआ होगा। दूसरी तरफ अनय पार्किंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा कि कार में बैठकर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए मनस्वी उसका वेट कर रही थी और अनय के आते ही उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना मोबाइल फ़ोन वापस पर्स में रख लिया। मनस्वी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है, इसलिए अनय तुरंत ही आकर उसके साइड वाली पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, सॉरी सॉरी बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ गया ना तुम्हें मेरी वजह से, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आदित्य के साथ बात में इतना टाइम लग जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मनस्वी ने उसकी बात काटते हुए कहा, रिलैक्स इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन वेट फॉर माई हस्बैंड। अनय अपना चेहरा थोड़ा आगे लाते हुए मनस्वी की आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा इसका मतलब सिर्फ मेरे लिए ही वेट करोगी ना इतनी देर और किसी के लिए तो नहीं। उसकी इस बात पर मनस्वी के चेहरे पर स्माइल आ गई, छुपाने की उसने पूरी कोशिश की और सामने रखे हुए अपने सनग्लासेस उठाकर आंखों पर लगा लिया और बोली, शायद आपने मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अनय ने शरारत से पूछा, अच्छा तो फिर क्या मतलब था? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था, मनस्वी ने इतना कहा और कार स्टार्ट की। फिर वो दोनों वहाँ हॉस्पिटल से निकल गए क्रमशः।